हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गिरिधारे राधा गिरिधारे राधे जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय बालदेवा जय सुभद्रा गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 9 श्लोक संख्या 13 और 14 मत्वा आत्मजम् अव्यक्तम् मर्त्यलिंगम् अदोक्षजम् गोपिका पुलुकले धामा प्रबन्ध प्राकृतं यथा స్వాత్మజం అవ్యక్తం సమ్మత్వాత్మజమవ్యక్తం సమ్మత్వాత్మజమవ్యక్తం మర్త్యలింగమదోక్షజం మర్త్యలింగమదోక్షజం గోపికోకుల గోపికోలుఖలేదాంనా బమంద ప్రాకృతం యథా బమంద ప్రాకృతం యథా సమ్మత్వాత్మజం వ్యక్తం సమ్మత్మాత్మజమవ్యక్తం మర్త్యలింగమదోక్షజం మర్త్యలింగమదోక్షజం గోపికోలుఖలే దాంనా గోపికోలుఖలే దాంనా అబంధ ప్రాకృతం యథా బబంద ప్రాకృతం యథా సమ్మత్వాత్మజమవ్యక్తం మర్త్యలింగం మదోక్షజం గోపికోలుఖలే దాంనా బబంద ప్రాకృతం యథా సమ్మత్వాత్మజమవ్యక్తం మర్త్యలింగమదోక్షజం గోపికోలుఖలే దాంనా బబంద ప్రాకృతం యథా వ్యక్తం మర్త్యలింగమదోక్షజం గోపికోలుఖలే దాంనా బబంద ప్రాకృతం యథా సమ్మత్వాత్మజమవ్యక్తం 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 నిర్మలింగమదోక్షజం గోపికోలుఖలే ప్రాకృతం యథా शब्दार्थ इस प्रकार है, तम उसको मत्वा मानकर आत्मजम अपना पुत्र अव्यक्तम अव्यक्त मर्त्यलिंगम मनुष्य रूप में प्रकट अदोक्षजम इंद्रिय बोध से परे गोपिका यशोदा ने उलूखले ओखल ओखली में दामना रस्सी से बंधा बांध दिया प्राकृतम यथा जैसे सामान्य मानवीय बालक को मानवीय बालक के साथ किया जाता है। अनुवाद और तात्पर्य ज्वाइंट है इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की चाय। अनुवाद, भगवान का ना आदि है ना अंत है, ना ब्रह्म ना बाह्य है ना भीतर है, ना ना आगा है ना पीछा है। दूसरे शब्दों में वे सर्वव्याप्त है क्योंकि वे काल तत्व से वशीभूत नहीं है, अतएव उनके लिए भूत वर्तमान तथा भविष्य में कोई अंतर नहीं है। सदा सर्वदा अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं। सर्वोपरि तथा परम होने के कारण सभी वस्तुओं के कारण कार्य हेतु सभी वस्तुओं के कारण कार्य होते हुए भी वे कारण कर्म के अंतरों से मुक्त रहते हैं। वही अव्यक्त पुरुष जो इंद्रियातीत है, जब मानवीय बालक के रूप में प्रकट हुए थे और यशोदा ने उन्हें अपना सामान्य बालक समझकर रस्सी के द्वारा ओखल से बांध दिया। तात्पर्य, भगवद गीता में कृष्ण को परब्रह्म कहा गया है, परम ब्रह्म परम धाम। ब्रह्म शब्द का अर्थ है सबसे बड़ा। कृष्ण महानतम से भी महान है क्योंकि वे असीम तथा सर्वव्यापक है। अतः ऐसे सर्वव्यापक को किस तरह मापा या बांधा जा सकता है, यही नहीं, कृष्ण साक्षात काल है। अतः वे न केवल देश में अपितु काल में भी सर्वव्यापक है। काल का भी माप है और हम भूत वर्तमान तथा भविष्य द्वारा सीमित है, किंतु कृष्ण के लिए ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को माप हो सकती है किंतु कृष्ण पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं कि व्यक्ति होकर भी वे अपने मुख के भीतर संपूर्ण विश्व को समाहित कर सकते हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि कृष्ण को मापा नहीं जा सकता। तो फिर यशोदा ने किस तरह उन्हें मापने और बांधना चाहा? हमें यह निष्कर्ष निकालना हुआ, यह सब दिव्य शब्द प्रेम के स्तर पर हुआ, यही एकमात्र कारण था। ஓமஜாத்விராந்தஸ்ய ஜ்ஞானாஞ்சனசலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோவிஷ்ணும் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப குதாமைஹம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹஸ்ரண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசகிதம் கிருஷ்ணச்சைதன்யதேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ணபாதாந்தகலலிதா ஸ்ரீவிஷாகாந்விதாம் ஸ்ரீகிருஷ்ண கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷு கோபிகா காந்தராதா காந்தரமோஸ்ததே சப்த காஞ்சன கௌரங்கிராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஸ்வானுஸ்ருதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே வாஞ்சாகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யைவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமஹ. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர சிவாசதி கௌர பக்தவிருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. ये श्लोक में यशोदामयी का जो प्रेम का पराकाष्ठा का वर्णन हुआ है, साधारणतः इस भौतिक जगत में हमारा बंधन होता है काल, दूसरा है स्पेस यानी आकाश, तो ये दो के द्वारा हमारा बंधन होता है। इसलिए हम इस जगत में हर एक व्यक्ति को हर एक वस्तु को काल के द्वारा और स्पेस के द्वारा, टाइम एंड स्पेस, ये दोनों के द्वारा हम माप सकते हैं। इस व्यक्ति का जन्म ये समय में हुआ है और इनका मृत्यु ये समय में हुआ है और इस व्यक्ति का लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, इस वस्तु का इतना लंबाई चौड़ाई है, इतना मोटाई है, इसका वजन इतना है, हम माप सकते हैं और उनका समय के हिसाब से हम गिन सकते हैं। ये समय से ये समय सकते हैं, इधर ये व्यक्ति इस जगह पे ये समय में इधर उपस्थित है, हम कह सकते हैं। लेकिन कृष्ण के विषय में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो काल और टाइम एंड स्पेस, काल और जगह जो होता है, उन दोनों से परे है। परे होने के नाते उनको हम ये भी नहीं कह सकते कि वो बहुत मोटे हैं और ये भी नहीं कह सकते बहुत पतले हैं। अब ये नहीं कह सकते अब बहुत लंबे हैं, ये भी नहीं कह सकते हम बहुत छोटे हैं। इतना कह सकते हो कि भगवान जो है, कृष्ण जो है, लंबे से लंबे हैं और छोटे से छोटे हैं, बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे हैं। अणोरणियाम महतो मनियाम महियाम, उपनिषद का वाक्य है। अणोरणियाम कृष्ण वो है जो छोटे हैं। कैसे छोटे हैं? आप कोई भी सबसे सबसे सूक्ष्म या सबसे छोटा वस्तु वो बताइए, कृष्ण कौन है उससे और छोटे हैं। कृष्ण कितने बड़े, अगर कोई पूछेंगे, आप कोई भी बड़ा वस्तु का, बड़ा चीज का वर्णन कीजिएगा, कोई बड़ा माप दीजिएगा, आप जो माप देंगे उससे बड़े हैं। ये कृष्ण का परिभाषा है। कृष्ण का जो भी माप होता है, कितने बड़े हैं अगर कोई पूछेंगे, आप बोल सकते हैं बहुत बड़े, वो भी गलत है। बहुत बड़े बोलना भी गलत है, क्योंकि अगर बहुत बड़े बोलेंगे तो उसका कुछ ना कुछ माप होगा। नहीं, भगवान महान है ये कहना भी गलत है, क्योंकि वो महत्तम से महान है। आपकी नजर में कोई महान दिखाई पड़ता है या सोच सकते हो, उस महान वस्तु के बारे, महान व्यक्ति के बारे में आपका सोच जहां तक जा सकता है उससे बड़े है। तो एक बार एक गणित का मैथमेटिक्स टीचर थे, तो उनसे पूछा गया कि इन्फिनिटी अनंत का परिभाषा क्या है। तब उन्होंने कहा अनंत का परिभाषा यह है कि आप जो शब्द बोलोगे उससे बड़ा शब्द को अनंत कहा जाता है, उसके लिए उसके बढ़कर और कोई परिभाषा हो ही नहीं सकता अनंत का। उसी प्रकार कृष्ण की परिभाषा भी यही है, जो महतो महियाम। महतो महियाम क्या है? अगर कोई आप बोलेंगे कृष्ण महान है तो बहुत सारे महान लोग इस जगत में, नहीं, आप कृष्ण को महान भी नहीं कह सकते, महात्म में से भी महान है। आपकी मनोकल्पना जितना दूर महत्ता को मापने की जा सकती है उससे महान समझ लीजिए। कोई और की कल्पना हो सकती है कि आपकी कल्पना से थोड़ा और ज्यादा जा सकता है तो उससे महान है। इसलिए ये जो 13वां श्लोक पे वर्णन किया गया है, क्या वर्णन किया गया है, न च अंतर न भैर्यस्य। कृष्ण को ये नहीं कह सकते हैं न च अंतर, ओ इसके अंदर है कृष्ण, नहीं ना ठीक है इसके बाहर है। कैसे कहेंगे कृष्ण इसके अंदर है उसके बाहर है? क्योंकि वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी तत्व को हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि आप इसके अंदर है या ये भूगोल के अंदर है बाहर है। अंदर बाहर उसी व्यक्ति के बारे में कहा जा सकता है जिसकी सीमा हो, जो असीम है, जो सर्वव्यापी है, हम उनको कभी ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर है और उसके बाहर है। अगर कोई आपसे पूछे ये कृष्ण कहाँ है तो आप बोलोगे इनके अंदर है, किसके अंदर है, कहाँ है, उसका एड्रेस भी नहीं बोल सकते हो। नहीं, कौन से समय पे कहाँ रहेंगे ये उनका कभी भी हम माप नहीं सकते। इसलिए उनके विषय में इधर कहा गया है न अच्छा अंतर न बहिर यस्य, उनके लिए ना किसी के अंदर है ना बाहर है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। बाद में आगे कहा गया है ना पूर्वम ना पी चापरम। ऐसा नहीं कि कृष्ण पूर्व में थे या अभी है या बाद में रहेंगे, इस वक्त कृष्ण इधर है आप बोल नहीं सकते हो। यू कैन नॉट टेल इस समय में कृष्ण कहाँ है, क्योंकि वो समय काल से परे है, समय से परे है, समय के नियंता है। काल के नियंता होने के नाते हम ये कभी नहीं कह सकते एट दिस टाइम वेयर इज कृष्णा, इस समय में कृष्ण कहाँ है, हम नहीं बोल सकते। क्योंकि हमारे लिए ये जो तीन प्रकार के काल का वर्णन हुआ है वो क्या है, वो भूत वर्तमान और भविष्य। कृष्ण के संबंध में कोई भूत वर्तमान भविष्य नहीं रहता है, कृष्ण के पास एक ही काल रहता है, वो है सदा वर्तमान मात्र रहता है। इसलिए कोई भी समय में कृष्ण कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं, कोई भी समय में कृष्ण कहीं भी उपस्थित नहीं भी हो सकते हैं। ये कृष्ण का तत्व का निरूपण इधर हो रहा है। अभी यशोदा मैंने बहुत प्रयास के बाद कृष्ण को बांधा, तो हो सकता है कि पहले नहीं बांधा, बाद में नहीं बांध पाएगी, अभी बांधी। तो अगर बांधने भी जाएंगे, इस जगत में कोई भी सीमित वस्तु है उसका माप होता है, जो असीम वस्तु को कैसे बांध सकते हैं? अगर ऐसा वस्तु है हर जगह व्याप्त है उनको कैसे हम बांध सकते हैं? वी कैन नॉट। इसलिए आगे कहा गया है पूर्वापरम बहिस्तांतर। पूर्वापरम पूर्वापरम परमम बहिश्चांतर। पूर्वापरम बहिश्चांतर का अर्थ क्या है? तो उनको भूत वर्तमान भविष्य इसके बीच में कोई भेद नहीं है और हमेशा अपना दिव्य स्वरूप में स्थित रहते हैं। जगतो यो जगच्च यहाँ, जगतो यो जगच्च यहाँ, the absolute beyond relativity is free from distinction between cause and effect, although he is the cause of everything. तो आगे कहा गया है जगतो यो जगच्च यहाँ, क्योंकि भगवान सारा जगत का सृष्टिकर्ता है, सारा जगत उनसे उत्पन्न होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस जगत के एक व्यक्ति है। भगवान सारे जगत में जितने भी वस्तुएं जारी चीजें उनका स्रोत होने की वजह से he cannot be called as a part of this material world. क्योंकि भगवान हर चीज का सृष्टि करते हैं, वो सृष्टि करना कर्ता होने के नाते वो सृष्टि के भाग नहीं है. इसलिए इधर कहा गया है जगतो यो जगत च यहाँ, जगतो या जगत च का अर्थ क्या है कि ही इज बियॉन्ड कॉज एंड इफेक्ट. ये जो भौतिक जगत जो कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी से उत्पन्न होता है उससे वो परे है. तो ये श्लोक में कृष्ण का तत्व का निरूपण हुआ है. किस प्रकार वो सर्वव्यापी है, किस प्रकार सर्वव्यापी होने के नाते वो काल जो स्थान से परे है वो उनका माप नहीं कर सकते हैं, जैसे इस जगत के वस्तुओं को माप सकते हैं. दूसरी बात कहा गया है कृष्ण तीनों कालों से परे हैं, भूत भविष्य वर्तमान से परे हैं, क्योंकि काल को नियंत्रण करते हैं. इसलिए हम किसी कृष्ण को इस जगह ये समय में हम प्राप्त करें कोई निश्चित नहीं कर सकते. दूसरी तीसरी बात क्या है, तो ये कृष्ण ये जगत के ही नहीं है, सारा जगत इनसे उत्पन्न हुआ है, तो इस जगत का वस्तु उनको कैसे बांध पाया. क्योंकि इस श्लोक में एक शब्द आया है बबंद प्राकृतम यथा दामना बबंद. दामना बबंद का अर्थ क्या है, धामना का अर्थ है रस्सी. रस्सी के द्वारा यशोदा मैंने क्या किया, बबंद. किसके साथ बबंद, गोपी गोपी ने उलूखले ओखल के साथ कृष्ण को बांधा. तो किसके साथ बांधा, रस्सी के साथ बांधा. इधर दो चीजें हैं, एक है यशोदा का बांधना, दूसरा है वो रस्सी. ऐसा कौन व्यक्ति है वैसे सर्वव्यापी कृष्ण को बांध सकता है, दूसरा है ऐसा कौन सा रस्सी है जो सर्वव्यापी कृष्ण को बांध सकता है या बांधने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. तो इस श्लोक में श्री विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि ये दो चीजों का महिमा का वर्णन हो रहा है, एक है यशोदा माई का महिमा, दूसरा है ये जो रस्सी है इसकी महिमा का वर्णन हो रहा है. क्योंकि यशोदा माई ने बांधा और बांधने के लिए क्या इस्तेमाल किया, उन्होंने रस्सी को इस्तेमाल किया. तो ये दो चीजों का महिमा का वर्णन इस श्लोक में हो रहा है. तो अगर प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि कृष्ण का तत्व का निरूपण इधर हुआ है तो वह सर्वव्यापी है, तो सबूत क्या है इसका. सबूत यही है श्री विश्वनाथ करके कहते हैं, पिछले अध्याय में तो भगवान ने दिखाया, क्या दिखाया, सारा विश्व को उन्होंने अपने मुख में दिखाया, पेट में दिखाया, अपने उदर में दिखाया. तो जो उदर के अंदर पूरा विश्व है ये समझना चाहिए कि वो उदर साधारण नहीं है, उनका शरीर साधारण नहीं है. तो ऐसा व्यक्ति को कौन बांध सकता है, ऐसा व्यक्ति को बांधने के लिए एक रस्सी कौन सा हो सकता है, ये साधारण व्यक्ति नहीं बांध सकता उसको. दूसरा, साधारण रस्सी के द्वारा उनको कृष्ण को बांध नहीं सकते. तो ये कौन सा रस्सी है, कौन है ये, तो ये दो चीजों का महिमा का वर्णन करते हुए ये श्लोक को उच्चारण किया गया है. तम मत्वात्पजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम, तम मत्वात्मजम एक, दूसरा है अव्यक्तम. तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम, तो तम मत्वा आत्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम. यशोदा को ऐसा कृष्ण जो सर्वव्यापी है, जो सारे चीज की सृष्टि करता है और समय के परे है, ये तीन विशेष है जिनका वर्णन हुआ है पिछले श्लोक में, उनका यशोदा क्या मानने लगी, तम मत्वा. मत्वा का अर्थ क्या है, तो मानने लगी, क्या मानने लगी, आत्मजम, मेरा पुत्र है, मेरे से जन्म लिया है. तो सारा जगत कृष्ण से जन्म लिया है, यशोदा भी कृष्ण से जन्म लिया है. यशोदा भी कहां से आई, कृष्ण से तो आई, इस जगत के प्रत्येक वस्तु तो हर चीज कृष्ण से आई है. अभी यशोदा ठीक विपरीत सोच रही है, क्या सोच रही है, ये मेरे से आ रहा है. तो ये विरोधात्मक बातें जो है खास करके पिछली बार भी आपको मैंने क्लास में बताया था जो ये जो वृद्ध सामान्यम तस्मिन् नक्षत्रम भगवान के जो तत्व निरूपण करते हुए पिछली बार हमने कहा था कि भक्तिनाथ ठाकुर का तत्व सूत्र का ये सूत्र है विरुद्ध सामान्यम तस्मिन् नक्षत्रम भगवान के अंदर ये जो विरोधात्मक बातें किस प्रकार समा जाते हैं ये बड़ा आश्चर्य की बात है लेकिन जो तत्व जानता है उसके लिए कोई आश्चर्य नहीं है कृष्ण के लिए कोई आश्चर्य नहीं है कोई जादूगर होता है समझ लीजिए जो जादू देखने वाले के लिए आश्चर्य है लेकिन जादू करने वाले का आश्चर्य नहीं रहता है लेकिन मान लो कि अद्भुत दृश्य कोई देख रहा है वो तो अद्भुत है लेकिन जैसे कोई बंदर का खेल है बंदर के लिए साधारण है कि नहीं हमारे लिए अद्भुत हो सकता है अनेकों अनेकों चीजें हैं इस जगत में हमको आश्चर्यजनक लग सकता है लेकिन वो खिलाड़ी जो है उसके लिए कोई आश्चर्य नहीं उसके लिए साधारण है उसके समान इट इज ऑर्डिनरी फॉर हिम उसी प्रकार ये जो परस्पर विरोधात्मक बातें समा जाना हमारे लिए आश्चर्यजनक हो सकता है लेकिन कृष्ण के लिए आश्चर्यजनक नहीं है इट इज नेचुरल फॉर कृष्ण स्वाभाविक है कृष्ण के लिए तो इधर भी हम देखते हैं कि जिस प्रकार कृष्ण के लिए स्वाभाविक है परस्पर विरोधात्मक बातें जिसके समा जाना कृष्ण के लिए स्वाभाविक है उनके शुद्ध भक्तों के लिए स्वाभाविक है तो उनके शुद्ध भक्त जैसे यशोदामय अभी ऐसा नहीं कि यशोदामय जो है वो जानती नहीं कि कृष्ण के तत्व को नहीं जानती है पिछले श्लोक में जो कहा गया 13वें श्लोक में कृष्ण सर्वव्यापी है करके यशोदामय जानती नहीं है वो जानती जरूर है लेकिन उनकी मात्र प्रेम मातृत्व प्रेम की वजह से वो जो जानकारी जो है वो जो ज्ञान जो है वो ढक जाता है वो गौण हो जाता है वो तुच्छ हो जाता है तो कृष्ण प्रेम इतना महान है कि जिसके अंदर कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है ये सारा कृष्ण का तत्व ज्ञान जो है वो दौड़ हो जाता है और ये कहे कृष्ण को मालूम नहीं यशोदामय को कृष्ण भगवान है करके मालूम नहीं कहना बराबर नहीं है उनको मालूम है क्योंकि वो शुद्ध भक्ति पार्षद है मालूम होने पर भी उनके अंदर कृष्ण के जो प्रेम है वो प्रेम क्या कर देता है ये जानकारी को ढक देता है इसे इधर कहा गया है तम मत्वा आत्मजम आत्मजम क्यों है क्योंकि पिछले श्लोक में कहा गया है कृष्ण सारे सृष्टि का स्रोत है स्रोत होने पर भी कृष्ण के स्रोत मानने लगे यशोदा दूसरा बात क्या है अव्यक्तम अव्यक्तम का अर्थ क्या है कृष्ण जो है वो अव्यक्त है यानी इस भौतिक जगत के साधारण व्यक्ति के रूप में उनको मर्त्यलिंगम वो सोचने लगे कि कृष्ण जो है मर्त्यलिंगम एक साधारण शरीर है उनका ऐसा विचार करने लगी और आगे ऐसा सोच के किसके विषय में सोच रही है अधोक्षजम के विषय में सोच रही है इसके श्री प्रभुपाद अपने अनुवाद में लिखते हैं सो the cause that unmanifested person is beyond the perception of senses has now appeared as human child and mother Ashoka considering to ordinary child bound him sadharan bhakti ke roop mein mante hue unhone shodha mein ko band diya abhi avyaktam martyalingam adokshajam adokshajam ka arth kya hai jinko indriyon ke dwara hum nahi jaan sakte one cannot be measured by one cannot be understood by one senses हम इंद्रियों के द्वारा जिनको जान नहीं सकते उनको अधोक्षजम कहा गया है तो वैसे श्री कृष्ण को यशोदा मैंने क्या किया प्रेम वश उनको बांध दिया तब बात उत्पन्न होता है यशोदा मैंने ठीक है बांध दिया लेकिन रस्सी क्या है कौन सी रस्सी के साथ द्वारा उनको बांधा तो रस्सी कौन सा है वो है उनका ही प्रेम का स्वरूप रस्सी तो जिस रस्सी के द्वारा यशोदा बहन ने कृष्ण को बांधा उखल के साथ वो रस्सी साधारण नहीं है अगर कोई कहे कि वो दिव्य है तो दिव्य वस्तु भी कृष्ण से प्रकट होता है तो दिव्य वस्तु भी कृष्ण से दिव्य तो हो ही नहीं सकता तो ऐसा कौन सा चीज है कृष्ण को बांध के रखा श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि ये जो यशोदा मई ने कृष्ण को बांधा, ये श्लोक में जो वर्णन हुआ है इसका आश्चर्यात्मक बात ये है, यानी आश्चर्य रस को अनुभव कर रहे सुखदेव गोस्वामी इसको वर्णन करते हुए। आश्चर्य रस क्या है? जो व्यक्ति ब्रह्मा शिवजी अनेकों देवी देवताओं को बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों को तीनों गुणों के द्वारा बांध के रख दिया, तो अभी वो खुद बंधे हुए हैं। ऐसा कौन सा चीज है जिनको जिसके द्वारा वो बंध गए? यानी ऐसा कौन सा चीज है जो तीनों गुणों से परे है? हमने तो केवल आज तक यही सुना है कि कृष्ण ही तीनों गुणों से परे है, हमने कभी ये नहीं सुना कि उनसे परे कुछ है। अगर मान लो कि आप किसी को बांध रहे हो, इसका अर्थ क्या है? जो व्यक्ति को आज जिस चीज को बांध रहे हो उससे वो आपकी अधीन में है। जैसे जीव सबको कृष्ण ने बांध के रखा, कैसे बांध के रखा? तीनों गुणों के द्वारा बांध के रखा। ब्रह्मा जी बंधे हुए हैं तीनों गुणों के द्वारा, तो ऐसा कौन सा चीज है, कौन सा रस्सी है जो कृष्ण को बांध के रखा? तब उसका जवाब यह है, एक ही चीज कृष्ण को बांध सकता है, वो है उनका प्रेम, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम ही ऐसा एक चीज है जो कृष्ण को भी बंधन में डाल देता है। तब ये प्रश्न उत्पन्न होता है, अगर कृष्ण प्रेम कृष्ण के बंधन को बंधन में डाल देता है तो कृष्ण भगवान कैसे हुए? तब ये इसके निराकरण करते हुए श्री बसिनो ठाकुर जयोदर में बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, तो बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। व्याख्या लंबा छोटा करते हैं, कहते हुए अंत में कहा, ये कृष्ण का स्वभाव है। ये कृष्ण का स्वभाव क्या है? स्वतंत्र है। कृष्ण संपूर्ण स्वतंत्र होने के नाते वो अपनी स्वेच्छा के अनुसार वो सारे बंधनों से मुक्त भी है, अपनी स्वेच्छा के अनुसार किसी के बंधन में आ भी सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के बंधन में स्वेच्छा के अनुसार किसी के बंधन से परे है, यानी बंधन से मुक्त है, कोई उसको बांध नहीं सकता है, वो स्वेच्छ है, वो स्वेच्छता संपूर्ण रूप में तभी पुष्ट हो सकती है जब अपनी स्वेच्छा के अनुसार बंधन में भी आ सकते हैं। अगर कृष्ण बंधन में कभी नहीं आ सकते तो उसके अंदर उनका बंधन हो गया। लेकिन थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर किसी ने कहा कृष्ण सारे बंधनों से परे है, वो कोई बंधन में नहीं आ सकते, तो ये भी एक बंधन है कि नहीं? कभी कृष्ण एक चीज ऐसा चीज है वो नहीं कर सकते। इसलिए श्री लक्ष्मणनाथ बिथिनो ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण कभी बंधन में नहीं आ सकते, ये भी एक बंधन है, तो उस बंधन से परे है। इसलिए उस वो साबित करने के लिए कृष्ण क्या करते हैं? अपना ही प्रेम के भक्तों के प्रेम के बंधन में आ जाते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे मायावादी लोगों का अन्य दार्शनिकों का कहना है, आप कहते हो भगवान स्वतंत्र है, तो ऐसा कैसे कि वो भक्तों के बोलने के ऊपर इशारे से नाचते हैं? जैसे गोपियां कहती है कृष्ण को, तुम नाचो तो मैं मिठाई दूंगी, तो गोपियां जैसे बोलते हैं वैसे कृष्ण नाचते हैं, ये देख के कहते हैं, तो ठीक विरुद्ध है। उपनिषदों में कहा गया है कि कृष्ण के भय से सारा जगत नाचता है, इशारे मात्र से सब कुछ होता है, उनके इशारे के मात्र से मत भयात वादिवाद हो, हवा बहती है, अग्नि जलाता है, सारे कार्य होता है। उपनिषदों में ऐसा कहा है, उनको नियंत्रण करने वाला कौन है? इससे आपके जो पुराण है वो सब बकवास है, ये सब चीजें आप हमको मत सुनाइए। कृष्ण तत्व को अपने सर में रखिएगा, ये सब बातें हमको सुनाइए मत। इससे कि ये भागवत में अन्य पुराण है जहाँ कृष्ण से लीला करते हैं वो ठीक नहीं है। तो उसके जवाब में श्री भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, अगर आप ये कहते हो कि कृष्ण सारे बंधन से परे हैं वो सत्य है, तो कृष्ण अपनी स्वेच्छा के अनुसार बंधन में नहीं आ सकते, ये भी उनका बंधन है। तो इस बात को भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण बाय हिज ओन स्वीट विल ही कम्स अंडर समबडीज कंट्रोल, कृष्ण बाय हिज ओन स्वीट विल इज बियॉन्ड समबडीज कंट्रोल। अपने शक्ति से अपने सामर्थ्य से कृष्ण जिस प्रकार वो सारे बंधनों से परे है, उसी प्रकार वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी के बंधन में आना भी उनका उनके उनके सामर्थ्य के अंतर्गत है, उनका स्वभाव है कृष्ण का। तो इसलिए हम कृष्ण की स्वतंत्रता के अंदर दखलंदाजी नहीं करना चाहिए. वी कैन नॉट इंटरफियर इन टू द नेचर ऑफ कृष्ण. उनकी स्वभाव में कभी भी दखलंदाजी नहीं करना है. तो कृष्ण का स्वभाव है, इट इज द नेचर ऑफ कृष्ण. व्हाट यू कैन डू अबाउट इट, आप क्या कर सकते हो. ये अपनी स्वेच्छा से वो क्या करते हैं, वो बन जाते हैं, वश बन जाते हैं. इसलिए हम इधर इसी प्रसंग को वर्णन करने वाला जो दामदाष्टकम है, जब हम कार्तिक मास में चर्चा करते हैं, तो उन्होंने सारे जगत को क्या घोषणा किया, भक्तेव भद्रम. सारे जगत को उन्होंने आख्यापयंतम घोषणा किया. क्या घोषणा किया, मैं केवल भक्ति के द्वारा ही बंधा जाता हूं. इसलिए मुक्तिम ददावि करे चेत तच भक्ति योगम. भगवान जो है मुक्ति को दे देते हैं, कोई मुक्ति मांगने के लिए आता था दे देते हैं, चल ले लो. लेकिन भक्ति देने में तो दो बार सोचते हैं. क्यों मालूम है, इतनी आसानी से भक्ति नहीं देते भगवान. उनको मालूम है अगर मान लो कि मैंने भक्ति दे दिया तो क्या करना पड़ेगा, हाँ तो उनकी इशारे से मुझे नाचना पड़ेगा, बंद जाऊंगा उनके उनके वो जैसा कहेंगे मुझे ऐसा करना पड़ेगा. तो इसलिए भगवान जो है भक्ति बहुत विरला कम लोगों को देते हैं. इससे मुक्ति जो है आसानी से प्राप्त हो सकता है, लेकिन भक्ति प्राप्त करना बहुत मुश्किल है. इसलिए श्लोक में कहा गया है भक्तिम मुक्तिम ददामि करिष्यति. दे देते, कभी कभी मुक्ति दे देते हैं, न च भक्ति योगम. आप बोलोगे ऐसा कैसे, भगवान हमारे हित नहीं चाहते क्या. एक तरीके से भगवान अपना हित चाहते हैं, एक तरीके से दया है. दूसरी भाव दूसरी बात क्या है, उनके अंदर ये भी डर है. क्या डर है, कहीं मैं उनको दे दिया तो मैं उनको उनके वश में हो जाऊंगा. इससे थोड़ा रिजर्व हो जाते हैं. हमेशा कृष्ण के मन में कॉन्ट्रडिक्शन रहता है. एक तो दया रहती है, दूसरा क्या है, स्ट्रिक्ट रहते हैं, एकदम रूल्स के हिसाब से चलते हैं. जब रूल्स रेगुलेशन होता है, कभी नियम कानून होते हैं, उसकी दया इतना प्रवाह नहीं कर सकता. इसलिए कृष्ण भी बंधे हुए हैं. कैसे, क्या बंधन है उनका, बंधन यही है कि अगर मैं दया दिखा के सबको भक्ति दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं खुद बंधन में आ जाऊंगा. इससे उनको कभी कठोर रहना पड़ता है. इससे भगवद गीता में कहा गया, भगवान ने क्या कहा, बजाम्य हम, आप जैसे मेरे साथ व्यवहार करोगे मैं उसके साथ ऐसे आपके साथ व्यवहार करूंगा. तो प्रेम में ये कोई रूल नहीं लागू होता है. जैसे प्रेम का आदान प्रदान होता है, उसमें ऐसा नहीं कि ठीक है आप एक दो तो मैं दो दूंगा, इस प्रकार का कोई व्यापार नहीं है. प्रेम प्रेम व्यापार नहीं होता है. लेकिन भगवद गीता में भगवान ने क्या एक व्यापार वाली बात कहा. क्यों, क्योंकि उनको मालूम है अगर मैं अपना स्वभाव को दिखाने लग जाऊंगा तो मैं सभी बंधन में आ जाऊंगा. इसलिए मैं कुछ ही लोगों के बंधन में आना चाहता हूं, जो एकदम बिल्कुल पूरा अपना जीवन पूरा समर्पित कर चुके हैं, मैं केवल उनके बंधन में आना चाहता हूं, क्योंकि वो उनके बंधन में मुझे प्रेम का रस का आस्वादन हो सकता है. तो ये जो बबंध प्राकृतम यथा, तो आखिरी शब्द है इसमें प्राकृतम यथा. यशोदा मैंने कैसे बांध दिया, ऐसा नहीं कि डर के मारे तो भगवान है जैसे कैसे भूलते हैं कि नहीं देखूं, ऐसा नहीं. प्राकृतम यथा, ये प्राकृतम यथा शब्द के द्वारा ये सूचित किया जा रहा है कि यशोदा मैंने दो बार सोचा भी नहीं ये कौन है, किसको बांध रहा. अभी तो मैंने इसके पेट के अंदर पूरा विश्व को दिखा था, ये सब बात को भूल गए. थोड़ा सा तो होश तो आना चाहिए था ना, कि मैं इसका पेट को बांधने के लिए प्रयास कर रही हूँ ओकल के साथ. अभी कुछ ही पिछले अध्याय में हुआ ना, यानी कुछ ही दिन पहले हुआ है, उसको उसके पेट में मैंने पूरा विश्व को दिखी थी, वो बात भी उनको याद नहीं था. इसलिए कृष्ण को जैसे यशोदा मैंने देखा, प्राकृतम यथा, प्राकृतम यथा का अर्थ क्या है, प्रबंध प्राकृतम यथा. जैसे कोई बच्चा होता है ना, जैसे साधारण माँ माँ जो है बच्चे छोटे बच्चे से कैसे डीलिंग करती है, जब पकड़ कैसे इलाके से भाग के रख देती है, इतना नटकर करता है तुम. ये क्षण के लिए भी उनके मन में ये बात नहीं आया, ये जो है अभी मैंने ये यही पेट के अंदर मैंने विश्व को पूरा देखा था, जरा ख्याल में भी नहीं आया था. तो प्राकृतम यथा, जैसे एक माँ बच्चे के साथ व्यवहार करती है, उसी प्रकार बिल्कुल यशोदा मैंने कृष्ण के साथ व्यवहार किया. तो सुरदीप्ति धामनी, विश्वस्य धामनी, सुरदीप्ति धामनी, जो सारा विश्व को बांधने वाला विश्व को अपने पीठ पे भगवान ने दिखाया, तो वैसा पीठ है उसको भगवान ने यशोदा मैं ने रस्सी से बांधा, तो उसके विषय में सुरदीप्ति धामनी। तब उधर उस श्लोक की टीका में जो आपको दामोदर अष्टक में प्राप्त होता है, उस श्लोक की टीका में श्री सनातन गोस्वामी पाद ये सुरदीप्ति धामनी उस शब्द के ऊपर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि उनका जो पेट के ऊपर जो बांधा हुआ जो रस्सी है उससे ऐसा बड़ा प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। ये क्या है प्रकाश? वो है ब्रह्म ज्योति निकल रहा है। हम साधारणतः यही सुने हैं कि भगवान के शरीर से ब्रह्म ज्योति प्रकट होता है, तदप्यस्य अनुभा, लेकिन उधर श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं ये रस्सी से ब्रह्म ज्योति प्रकट हो रहा है। ब्रह्म ज्योति करता क्या है, ब्रह्म ज्योति है क्या? हमने दो जगह अलग अलग जगह बहुत सारी व्याख्या ब्रह्म ज्योति का, लेकिन श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं ये ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान की प्रेम भक्ति से उत्पन्न हुआ प्रकाश है। भगवान का शरीर से उत्पन्न हुआ प्रकाश नहीं है, उनकी प्रेम भक्ति से उत्पन्न हुआ प्रकाश है। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति को आया तुरंत उसके आंखों में कुछ टॉर्च लाइट जैसा डाल देंगे तो क्या होगा, उसको कंफ्यूजन कुछ दिखेगा नहीं है कि नहीं? तो वैसे ही ये जो ब्रह्म ज्योति ऐसा चीज है जो मायावादी अन्य जो निराकारवादी है उनको दिग्भ्रमित करने वाला है। तो ये दिग्भ्रमित करने वाला शक्ति कहां से उत्पन्न हो रहा है? वो कृष्ण की प्रेम भक्ति से उत्पन्न हो रहा है। ये कृष्ण की प्रेम भक्ति जो है ऐसा सबको दिग्भ्रमित करने वाली चीज है, भक्तों को भी भ्रमित करा देती है। क्या भ्रमित करा देती है? कृष्ण भगवान है करके भ्रमित करा देती है। और दूसरी ओर ये अभक्त होते हैं, निराकारवादी होते हैं, मायावादी होते हैं, उनको भी भ्रमित कराने वाली चीज है। कृष्ण प्रेम इतना कंफ्यूजिंग है कि इतना दिग्भ्रमित कराने वाली चीज है वो कि कृष्ण को भी भ्रमित करा देती है। इट इवन बिल्डर्स कृष्ण, कृष्ण में चबक हो जाते हैं, ये है क्या, व्हाट इज दिस, आश्चर्यजनक चीज है, व्हाट इज लव। ये कृष्ण प्रेम जो है इतना आश्चर्यजनक चीज है, वो किसी को भी चमत्कृत करा देती है, किसी को भी दिग्भ्रमित करा देती है। एक तो मोहित करा देती है सारे भक्तों को ताकि वो कृष्ण के पास ना आए, भक्तों को मोहित करा देती है। कैसे? वो कृष्ण को बुला देती है, कृष्ण भगवान है करके वो लोग भक्तों को बुला के उनका प्रेम से आदान प्रदान करते हैं। और यही प्रेम भक्ति जो है किसको भ्रमित करा देती है? कृष्ण को ही भ्रमित करा देती है। कृष्ण स्वयं भूल जाते हैं मैं भगवान हूं और वो भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार श्रीपाद सनातन गोस्वामी सुरदीप्ति धामने, ये जो रस्सी, रस्सी को क्या कहा गया, कृष्ण प्रेम है, रस्सी कुछ और नहीं है, कृष्ण प्रेम है, उससे उत्पन्न जो प्रकाश है, दीप्ति जो है वो सबको दिग्भ्रमित कराने वाली चीज है। खास करके तीन प्रकार के जो लोग हैं, भक्त है और प्रेम भक्त है और दूसरे है तीसरे कृष्ण, इन तीनों को मोहित कराने वाली है। इसलिए वो क्या करते हैं आखिरी में सत्यव्रत मुनि वो क्या किसको प्रणाम करते हैं? हाँ नहीं, मैं सबसे पहला किसको प्रणाम करता हूँ? रस्सी को प्रणाम करता हूँ। मैं उन रस्सी को प्रणाम करता हूँ, बाद में किसी और को। फर्स्ट एल पी ओबिशंस इज टू द धाम, जो जो रस्सी है जर को बांधा है, पहले उस रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आप बोला ये रस्सी को प्रणाम करना क्या है, रस्सी को कोई प्रणाम करने वाली चीज ही ना है। तो ये रस्सी जो है कृष्ण प्रेमय स्वरूप आयो कौन है? आगे श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं ये रस्सी जो है कृष्ण प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। तो अगर कृष्ण प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है, आगे सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि मैं प्रणाम करता हूं पहले रस्सी को, बाद में किसको प्रणाम करता हूं? मैं उदर को प्रणाम करता हूं, तो सारा जगत को धारण करने वाला उदर को प्रणाम करता हूं, बाद में नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, बाद में मैं उन राधिका को प्रणाम करता हूं। तो राधिका कौन है? श्रीमती राधारानी कौन है? कृष्ण प्रेम की हलादिनी शक्ति है, कृष्ण का स्वरूप शक्ति है श्रीमती राधारानी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो प्रश्न यह आता है कि पिछली बार भी इसके बारे में हमने कहा कि भगवान को यशोदा दामोदर करके नहीं बोला जाता है, राधा दामोदर करके कहा जाता है, दोनों राधा दामोदर ओनली, उनको यशोदा दामोदर करके नहीं कहते हैं। भले ही ये लीला जो है वात्सल्यमय लीला है, फिर भी हम कह सकते हैं यशोदा और दामोदर, लेकिन यशोदा दामोदर करके बुलाना ये रसावास माना जाता है, राधा दामोदर करके उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि वो रसी कोई और नहीं हो सकता। यशोदा मैंने श्रीमती राधा रानी का प्रेम के द्वारा उन्होंने कृष्ण को बांधा है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी जो माधुर्य रस को पोषण करने वाली है, ये माधुर्य रस के अंतर्गत सारे प्रकार के रस है, इसलिए यशोदा मैं भी ने क्या किया, वो राधा रानी का शक्ति के द्वारा ही उन्होंने क्या किया, कृष्ण को बांधना, इसको उनको बांधा है। ऐसा करके उधर श्री पार्थ सनातन गोस्वामी पर अपने लिख्य श्रुतिका में ये आखिरी श्लोक जो है दामोदराष्टम का, उसके ऊपर व्याख्या करते हैं। पूरा लीला तो वात्सल्य में लीला है, लेकिन लास्ट में क्या आ गया है, वो राधिका, अचानक राधिका राधा रानी आ गए। वो क्यों है, ये जो दाम बंधन लीला पहले राधा रानी भी कर चुकी है, राधा रानी भी कृष्ण को बांध के रखी थी, इसलिए कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा। इसलिए कभी दाम बंधन लीला यशोदा मैं के साथ ही नहीं हुआ, राधा रानी के साथ भी हुआ है। राधा रानी पेड़ के साथ बांधी थी, ओखल के साथ नहीं बांधी थी, ये कृष्ण जो है यशोदा ने कृष्ण को ओखल के साथ बांधी, अंतर यही बंधन है। बंधन होगा कौन बांध सकता है, कृष्ण को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन कृष्ण प्रेम का स्वभाव ऐसा है, कृष्ण अपने स्वेच्छा से बन जाते हैं और उस बंधन में वो विशेष आनंद को अनुभव करते हैं। जब वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, नवद्वीप की लीला समाप्त होने के बाद संन्यास लेके जगन्नाथपुरी में गए, तब वही कहते हैं कि मैं इन भक्तों के प्रेम में इतना बंधन में आ चुका हूँ कि मुझे डर लगता है, अगर मैं तपस्या करने जाऊँ तो संन्यास का धर्म होता है तपस्या करना, तपस्या करने जाता हूँ तो मुझे जगदानंद आके मुझे सुंदर सा आसन देता है, पान वगैरह इत्यादि देता है, सन्यासी को ऐसा स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे डर लगता है, अगर ये स्वीकार नहीं करो तो मुझे डांट पड़ेगी। तो इतना हद तक कि वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, आके सन्यास देने के बाद भी जब जगन्नाथपुरी में ये अपने भक्तों के साथ उनका जो प्रेम की जो लीलाएं हैं और अपने आप को भक्तों के वशभूत समझते हैं, वैसे स्वतंत्र भगवान इस प्रकार भक्तों के वश में हों ऐसा अनुभव करना, ये उनका स्वभाव है, कृष्ण का स्वभाव है। तभी चैतन्य महाप्रभु दक्षिण की ओर निकलने का उन्होंने संकल्प किया, उसने सोचने लगे अभी उनको क्या बोलूं, मैं जाऊं प्रचार करने के लिए जाऊं, हम लोग बोले प्रचार भाग रहे हो, हमें हम इधर ही रहो, छोड़ने वाले नहीं है। उन्होंने सोचा कि और थोड़ा जाल चलाता हूं, तो मैं दक्षिण भारत जाऊंगा, लेकिन कैसे जाऊंगा, किसके लिए जा रहा हूं, क्या बहाना बनाया, मैं अपने भाई विश्वरूप को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। तो इस बहाने से वो लोग तो कुछ बोल नहीं सके, इतना तक कि सबको चैतन्य महाप्रभु ने कन्विंस कर दिया, ठीक है मैं जाने का आज्ञा नहीं लिया। अब उनको डर लगा, सार्वभौमाचार्य को बोलूं कैसे मैं इस बात को। तो ये चैतन्य महाप्रभु का स्वभाव है, भगवान कृष्ण का स्वभाव है, he likes to be dependent on his devotees then materialistic dependence on him। जिससे जब कोई भौतिक व्यक्ति भगवान की बात है, भगवान की बात है, वो भगवान मैं आपका शरण लेना चाहता हूँ, मैं आपके शरण में आऊँ, कहाँ से आगे सोचते हैं। लेकिन वही भगवान जिसका शरण सारा जगत लिया है, वही भगवान क्या करते हैं, भक्तों का शरण में रहते हैं, कृष्ण का स्वभाव है। हरे कृष्ण क्वेश्चन ही क्वेश्चन। हाँ हाँ प्रश्न है कि भगवान 500 साल प्रकट हुए, 5000 साल प्रकट हुए, ये हम कहते हैं, वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु वो हमारे लिए 500 साल पूर्व प्रकट हुए, उसको क्या कहा गया, प्रकट कहा गया है। प्रकट का मतलब क्या है, ये हमारे लिए प्रकट है, लेकिन उनके लिए प्रकट नहीं है, उनके लिए हमेशा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रकट हुए करीबन से 30 साल पहले, 35 साल पहले, समझ लीजिए 35 साल पहले आप प्रकट हुए, आपके लिए भी आप प्रकट हुए, हमारे लिए भी आप प्रकट हुए, है कि नहीं? तो कृष्ण के हिसाब से, कितने माप के हिसाब से वो अपनी नित्य लीला चलती है, इसको अप्रकट लीला कहा जाता है। सनातन रूप में चैतन्य महापुरुष नवद्वीप में रहते हैं, लेकिन वो कभी प्रकट करते हैं, कभी अप्रकट करते हैं। कृष्ण अभी वृंदावन में लीला कर रहे हैं, लेकिन कभी वो प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है। ठीक है, हाँ
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 हाँ अच्छी वो बात हमने सुना, आपने सुना गया बराबर है। भगवान जो है अपनी लीला सुनने में मजा आता ही है, लेकिन उधर पॉइंट ये था ब्रजवासियों का स्मरण में उनको वो रूप प्रकट हुआ था, तो कृष्ण चाहते थे कि ब्रजवासियों के बारे में सुनो, क्योंकि भगवान कृष्ण और भक्त अलग कभी नहीं हो सकते। उधर कृष्ण का जो आसक्ति तक किस प्रति था, मैंने कैसे मक्खन चोर किया, उसके बारे में सुनने का मजा नहीं था उनको। उनका ये था कि उनके प्रेम भक्त है, उनके विषय में सुनने का उनका ये था। हाँ, कभी कभी हम कहते थे कि भगवान कृष्ण स्वयं कृष्ण लीला सुनना चाहते हैं, वो भी है, लेकिन साथ साथ में बात यह है कि कृष्ण व्रज लीला, व्रज लीला व्रजवासियों की लीला, कृष्ण के लिए अति प्रिय है भक्त लीला, भक्त के लिए अति प्रिय है भगवत लीला। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ उनसे, हाँ प्रेम भक्ति से निकलता है तेज। हाँ बराबर, हाँ भक्त प्रार्थना करता है, अब भक्त बोलता है कि बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है, एकांत एकांत की है ना, व्हाट इज द श्लोक, ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्य च अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखम एकांतिकस्य च, वो एकांत की सुख को उससे मजा लेता है, वो ब्रह्म तेज में लीन हो मजा ले रहा हो। कहीं भक्त चाहता है नहीं 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 ये हटाओ, मैं आपका मुखमंडल दर्शन करना चाहता हूँ, तो वही अंतर है। हाँ सबको प्रभाव पड़ता है, सर्वम कलुइदम ब्रह्मन, ये भी सब ब्रह्म है ना, जैसे कोई टीवी है वो ब्रह्म है कि नहीं, ब्रह्म नहीं है जड़ ब्रह्म है, उसके बारे में प्रभाव नहीं है, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से प्रभाव है। ये भौतिक जगत भी क्या है, भगवान की शक्ति है ना, सर्वम कलुइदम ब्रह्मन का अर्थ क्या है, भौतिक जगत भी ब्रह्म है लेकिन जड़ ब्रह्म है। अंततः मूल स्रोत कौन है इन सबका, वो है भगवान की स्वरूप शक्ति। ये स्वरूप शक्ति से ही चित शक्ति, जीव शक्ति और जड़ माया शक्ति, ये तीन चीजें उत्पन्न होती है। ये सोचना कि ये जगत भगवान से उत्पन्न हुआ है गलत है, भगवान की शक्तियों से उत्पन्न हुआ है, भगवान की स्वरूप शक्ति से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, क्या भगवान राम मंदिर, कृष्ण भगवान राम मंदिर में प्रवेश किया या शिव मंदिर में प्रवेश किया, इसका कोई प्रमाण है क्या? अच्छा अच्छा, मंदिर था क्या प्रमाण? प्रमाण एक है कि भगवान श्री कृष्ण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये जो चार विग्रहों को सेवा जरूर किया, इसका प्रमाण है। प्रमाण कोई आपको पुराण में प्राप्त नहीं होता, लेकिन सर पुराण में प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में केरल में गुरुवायूर के आजू बाजू में चार मंदिरें हैं जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को समर्पित है। कुछ लोग कहते हैं भगवान राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न राय थे, लेकिन वो चित्रव्यूह विग्रह है जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनका पूजा करते थे द्वारका में। वो विग्रह जो है अपने स्वयं लीला से वो द्वारका से आते आते केरल में आके एक राजा ने उधर उनको स्थापना किया था। और अभी भी उस स्थल पुराण के अनुसार ये चार विग्रहों को कृष्ण ने सेवा किया था। ये है उसमें से एक जो है वो दिव्य देशम है उन चारों में से। जैसे राम मंदिर है गुरुवार के नजदीक में एक जगह तीर्थप्रयाग उधर है, फिर वो एक कोलम करके एक जगह है उधर लक्ष्मण का विग्रह है, ऐसा चार विग्रह है। हाँ शिव जी का विग्रह का सेवा किया मुझे इतना, शिव जी से युद्ध जरूर किया है। हाँ सुभद्रा जी अच्छा हो सकता है, मैं मुझे मालूम हो सकता है। शिव कृष्ण जो है उस समय लीला के समय सनातन धर्म को पालन करते थे। सनातन धर्म में देवता बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, तो इससे पता कर सकते हो किए होंगे। हरे कृष्णा। संतरा भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय।